چلے یہ پرندے، حوصلے اب جوان ہیں، اڑ چلے یہ پرندے، حوصلے اب جوان ہیں، نہ رکے گا یہ کاروان، دور ہم سے نہیں اب آسمان، ہے قدم سے قدم مل چلے، آپ ہیں ساتھ میں جب چلے، ہے امنگ
خوشبو بن کر گلوں سے اڑا کرتے ہیں، دھواں بن کر پربتوں سے اڑا کرتے ہیں، یہ کینچیاں کیا خاک ہمیں اڑنے سے روکیں گی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ نمسکار، میں ہوں امیت وادھوا، نئی سوچ نیا وشواس کارکرم میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں۔ دوستوں، پرماتما کے استتو کو لے کر ہمارے من میں کئی پرشن اٹھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں परमात्मा के सत्य परिचय को जानने का प्रयास किया और हमें उसके एक होने के तार्किक प्रमाण भी मिले। कार्यक्रम में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी। दीदी जी, एक बार फिर नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
थैंक यू
दीदी। पिछले एपिसोड में आपने बताया कि परमात्मा एक है, सर्व धर्मों में उसकी मान्यता जो है वो प्रकाश स्वरूप की है और वो निराकार है, लेकिन अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें कि निराकार अर्थात क्या, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
जब हम निराकार कहते हैं तो निराकार का शाब्दिक अर्थ न लेकर के एक विशेषण है। शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ही न हो
जी,
लेकिन परमात्मा का अपना आकार है, ज्योति स्वरूप ही आकार है। जैसे दुनिया में परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है
जी,
निर्गुण का भी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन परमात्मा तो गुणों में अनंत है
जी।
तो निर्गुण किस भाव से कहा गया, एक विशेषण के रूप में कहा गया कि जिसके अंदर प्रकृति के जो तीन गुण है, सात्विक राजसिक तामसिक, वो तीन गुणों से वो परे है
जी,
उस भाव में कहा निर्गुण है
ओके,
लेकिन वो गुणों में अनंत है। ठीक इसी तरह निराकार का मतलब ये नहीं कि जिसका आकार ही न हो, लेकिन जिसकी आकृति कोई शारीरिक मनुष्य सदृश नहीं है
जी,
लेकिन उसकी अपनी आकृति जो है वो ज्योति स्वरूप के निराकार के रूप में है, कि जिसकी फिजिकल कोई आकृति नहीं है
जी,
उस भाव से लिया गया है कि वो निराकार है
जी। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन यहां पर एक प्रश्न आ रहा है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी बताया कि भारत में जो निराकार भगवान की मान्यता है वो ज्योतिर्लिंगम शिव स्वरूपम है और उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है
जी।
मगर शिव की तो हम आकृति देखते हैं, उनका एक रूप स्वरूप देखते हैं, तो फिर हम उन्हें निराकार कैसे मानेंगे?
ऐसा है कि यहां आप जो बात कर रहे हैं वो शंकर की है, शंकर की आकृति है
जी।
लेकिन ज्योतिर्लिंगम की आकृति खाली लिंग स्वरूप में है
जी।
तो वास्तव में अभी ये बात अगर हम आपको कहे, एक और रहस्य उद्घाटन करना चाहते हैं परमात्मा के विषय को लेकर के, कि शिव और शंकर दो अलग है, एक नहीं है।
पर ये तो बहुत आश्चर्यजनक है दीदी, क्योंकि जब से हमने ईश्वर के बारे में समझा या देवी देवताओं के बारे में समझा, हमें तो शिव शंकर एक ही बताए गए या शिव के ही नाम बताए गए, शिव भोलानाथ शंकर या उनके कई नाम हैं
जी, ये कहा जाता है। परंतु अगर हम ध्यान से उस बात को समझे कि जहां पर भी 12 ज्योतिर्लिंगम द्वादश ज्योतिर्लिंगम दिखाए गए हैं,
हाँ जी,
वो द्वादश ज्योतिर्लिंगम में हमेशा शिव की प्रतिमा पाई जाती है, यानी लिंग की आकृति में। और देखा जाए तो दोनों का नाम भी अलग है, शिव निराकार को कहते हैं, शंकर उस आकृति स्वरूप वाले को कहते हैं
जी।
दूसरी बात कि दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है, एक को ज्योति स्वरूप में दिखाया
जी,
एक को आकारी स्वरूप में दिखाया, तो आइडेंटिटी अलग हो गई। तीसरा, दोनों का ऑक्यूपेशन ही अलग है, नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन भी अलग। शिव को कहा भोलेनाथ
जी,
या शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले हैं, और शंकर के लिए कहते हैं कि जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है, तो एक कल्याणकारी है एक प्रलयकारी है।
पर दीदी, यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा, हमने जब भी शिव या शंकर, अगर ये अलग अलग हैं, हमने जब भी इनकी कहानियां पढ़ी, देखी या हमें जब सुनाई गई, तो इन्हें एक ही करके दिखाया गया
जी
है।
परंतु क्योंकि किसी ने हमें स्पष्टीकरण दिया ही नहीं
जी,
तो जहां नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कार्य अलग है दोनों के। जब भी कोई मंत्र देता है, भक्ति में भी, गुरुओं से भी जब भी कोई मंत्र मिलता है, हर एक ने आज दिन तक ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया
जी,
और उस मंत्र को कभी भी हम ओम नमः शंकराय नहीं बोलते हैं।
हाँ जी,
अगर एक है तो बोलना चाहिए।
जी जी जी,
नहीं बोलते हैं। अच्छा, भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है।
हाँ जी,
शिवरात्रि को कभी शंकर रात्रि तो नहीं कहा।
जी जी जी, कभी नहीं,
है ना। अच्छा, शंकर को हमेशा पूरा गृहस्थ धर्म में दिखाया है।
हाँ जी,
माँ पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, फुल फैमिली है।
हाँ जी, ये प्रश्न भी पूछने वाला था मैं,
तो फैमिली स्वरूप में दिखाया है। तो जो गृहस्थ धर्म में है, तो परमात्मा तो मात पिता, स्वयं ही मात पिता है
जी।
परमात्मा को कहते हैं ना मात पिता
जी,
तो दो नहीं है, एक ही मात पिता है
जी 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 जी।
जबकि शंकर की अपनी फैमिली है, अगर उसको पिता माने तो माँ पार्वती को माँ मानना चाहिए, मात पिता नहीं कह सकते एक को।
हाँ जी,
है ना।
हाँ जी,
शंकर को भी अगर देखें, हमेशा उसके चित्र जहां पर भी हम देखते हैं ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं
जी।
वो किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर वही महादेव है
जी,
तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं?
बताया तो ऐसा जाता है दीदी कि वो तीनों लोगों के ध्यान में है।
तीनों लोकों का ध्यान नहीं, वास्तव में कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने भी परमात्मा का ध्यान किया, क्योंकि कैलाश माना ही दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है
जी।
वहां बैठकर शंकर ने भी शिव का ध्यान किया। अब उसको ध्यान करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए ध्यान किया क्योंकि जिस तरह श्री राम ने रामेश्वरम में उसकी पूजा की, क्योंकि रावण से युद्ध करना था।
हाँ जी,
तो शक्ति चाहिए थी। श्री कृष्ण ने इसीलिए याद किया क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त करानी थी। लेकिन शंकर को महाविनाश सौंपा हुआ था
जी।
तो इतने सालों जो ध्यान में बैठे, उस ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा उस शक्ति को हासिल किया जिससे महाविनाश का कार्य बहुखूबी निभा सके
जी।
लोक भक्ति में भी ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और जहां शिव के लिए आता है तो कहते हैं शिव परमात्माय नमः
जी।
तो एक शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः
जी।
तो एक परमात्मा है, एक देवता है शास्त्रों के हिसाब से
जी। जी,
दूसरी बात कि एक क्यों समझ लिया? क्योंकि दोनों का जन्म नहीं दिखाया है। शिव भी शंभु है, स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुआ है
जी।
और शंकर के लिए भी कहा जाता है कि उसका भी कोई माता पिता के द्वारा जन्म नहीं है, लेकिन उसकी उत्पत्ति है।
ओके,
और शास्त्र अनुसार ही शंकर की उत्पत्ति प्रकाश से दिखाई है
जी,
या ओम से उत्पत्ति दिखाई है
जी।
तो क्योंकि उनका भी कोई फिजिकल जन्म नहीं और शिव का भी कोई फिजिकल जन्म नहीं, इसलिए दोनों को एक समझ लिया गया
जी। और प्रकाश से उत्पत्ति यानी कि
शिव से,
निराकार भगवान शिव से
उत्पत्ति हुई है,
लेकिन इनकी उत्पत्ति शिव के द्वारा हुई है और शिव की उत्पत्ति स्वयं से हुई। ये अंतर है
जी।
पर दीदी, हमने तो कभी इन बातों पर विचार नहीं किया, क्योंकि हम तो आज तक जय जय शिव शंकर और इस तरह के न जाने कितने सारे गीत गाते आए और दोनों को एक ही मान करके चल रहे थे। शायद यही वजह है कि भारत में निराकार के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। दोस्तों, ये कितने गहरे राज की बात है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, और दीदी ने जितने तार्किक रूप से हमें बताया, हमने तो कभी नहीं सोचा होगा कि शिव और शंकर अलग भी हो सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो अगर हमारे बीच में मौजूद दर्शक कुछ पूछना चाहते हैं दीदी से, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न, तो वो भी पूछ सकते हैं।
दीदी, मैं नीता सिंह, रिटायर्ड टीचर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं मानते हैं, क्यों?
बहुत सुंदर बात आपने पूछी, क्योंकि अक्सर ये मान्यता है दुनिया के अंदर कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और ब्रह्मा कुमारी भी ये कहती है कि अगर भावनात्मक दृष्टिकोण से लिया जाए तो ये सत्य है, ये हम भी स्वीकार करते हैं। कि आज अगर मैं बाजार कहीं जा रही हूं और कोई मुझसे पूछ ले कि बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे नहीं, भगवान मेरे साथ है। तो ये एक भावना है, लेकिन सिद्धांतिक रूप में मान लेना कि भाई कण कण में परमात्मा है, ये कहीं न कहीं मनुष्य को अज्ञानता की ओर ले जाता है। क्योंकि आज अगर प्रैक्टिकल देखा जाए कि कोई हमें कह दे कि भाई फलाना व्यक्ति जानवर जैसा है, तो भी हमें एक अपमान महसूस होता है, इंसल्ट महसूस होता है। और ईश्वर को हम कहे कि वो कूड़े में है, कचरे में है, गंध में है, गटर में है, सब में है, कण कण में है, तो क्या ये ऊंचे से ऊंची हस्ती परमात्मा का अपमान नहीं है?
पर दीदी, यहाँ पर ये भाव भी तो हो सकता है ना, जैसा हमने पिछले कड़ी में चर्चा की थी, भावनात्मक रूप से ऋषि मुनियों ने कहा था कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, या वो हम में, हमारे अंदर है, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, ऐसा भी तो कहा जाता है कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है।
तो अगर आत्मा और परमात्मा दोनों साथ है, तो एक व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का?
ये आत्मा का कर्म हुआ।
अगर ये कर्म आत्मा का है, तो फिर अंदर बैठा हुआ परमात्मा उस वक्त क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी भी शक्ति नहीं कि एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके?
पर दीदी, ऐसा सुना है कि परमात्मा कभी भी आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के कर्म में आड़े नहीं आता, बीच में नहीं आता।
ठीक है, ये बात भी आपकी सही है कि चलो परमात्मा किसी के कर्मों में इंटरफियर न करे, लेकिन आज मान लो कि जैसे घर में माता पिता है, बच्चे हैं, और माता पिता सामने बैठे हैं, बच्चे किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा करने लग जाए, तो क्या माता पिता देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने, हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे?
छुड़ाते तो हैं, बताते तो हैं कि ये गलत है, ये सही है।
हाँ, तो जब एक शारीरिक माता पिता एक जन्म के वो भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो परमात्मा तो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, तो वो क्या बच्चों को आपस में लड़ते हुए, गलत कर्म करते हुए देख सकता है?
नहीं
देख सकता है। आज देखो, कोई किसी को कोई बात पूछता है या बताता है और उसको मालूम नहीं होती है।
हाँ जी।
तो नेचुरल रूप में भी मनुष्य यही कह देता है, भाई ऊपर वाला जाने, तुम उस झंझट में क्यों पड़ते हो, छोड़ दो, कहेंगे ना।
हाँ जी।
कभी गलती से भी हमने ये नहीं कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और जो कण कण में व्यापक है वो कौन है?
जी,
सवाल तो उठता है ना।
जी हाँ।
कि भाई ऊपर वाला, गलती से भी हमने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा नीचे वाला जाने, ये जो सब में विराजमान है वो जाने,
कभी नहीं कहा ऐसा,
ऊपर वाला जाने। तो जब परमात्मा की ओर वो संकेत है कि ऊपर वाला जाने, तो जरूर वो ऊपर है
जी,
वो कण कण में नहीं है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में भी जब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं अधर्म का नाश और एक सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतरित होता हूं। तो वो आता है ना, उसका वायदा है
जी।
अगर वो यही है तो फिर ये गीता के महावाक्य ही गलत हो जाए। अगर वो यही है तो फिर कौन आएगा? अगर वो यही है तो इसके होते इतने अधर्म क्यों? होना ही नहीं चाहिए। आज देखो प्रकृति के पास भी एक गुण है कि वो अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकती है, है ना? अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग
जी।
आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लगता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते हैं तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। तो परमात्मा जो गुणों में अनंत और हमारे बाजू में बैठा हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है?
जी दीदी, बात तो सही है। परमात्मा के साथ होते तो हमें सकारात्मक शक्तियों का अनुभव होता है। लेकिन एक बात यहां पर जानना चाहूंगा, आप शास्त्र की बात कह रहे थे कि शास्त्रों के मुताबिक परमात्मा आता है, हमेशा हमने उसे ऊपर वाला कहा, मगर शास्त्रों में ही वर्णित है कि वो कण कण में विद्यमान है।
ऐसा है कि शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? कुछ अनुभव के बेसिस पर लिखे
जी।
तो ऋषि मुनियों के पास ये शक्ति थी कि दे वर एबल टू ट्रेवल थ्रू टाइम, समय को वो देख सकते थे
जी।
और जब वो देखते थे कि कलयुग जब आएगा तो मनुष्य घोर पाप कर्म करेगा, हम मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है
जी,
ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और वो पाप कर्म न करे। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब वो घुटना करना सीखता है तो घर से बाहर निकलना चाहता है और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर न निकल जाए
जी।
तो माँ उसको दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेंगी देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा या गाय उठा के ले जाएगी। अब ये कुत्ता या गाय उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, ये भावना थी माँ की,
घर की सीमा घर की मर्यादा में रहे।
और इसलिए वो घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, जैसे ही कुत्ता या गाय देखता अंदर वापस आ जाता है, खुश होता है, आई एम सेफ
जी।
ठीक यही बात को लेकर के ऋषि मुनियों ने भी ये बात लिखी थी। और इसीलिए आज से 100 साल पहले भी अगर देखा जाए तो समाज ऐसा था कि मनुष्य पाप करने से डरता था, कोई अगर किसी को प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो भी वो कह देता था अरे नहीं नहीं, मैं बाल बच्चे वाला हूं
जी,
समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है
जी।
मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब उसको कोई कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? वही डायलॉग बोलता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा
जी।
यानी अब वो समझता है पाप करना भी मंजूर है
और बड़ा नेचुरल सा हो गया,
नेचुरल सा हो गया। तो वो बात जो शास्त्र में जिस भाव से लिखी गई थी, क्योंकि मिडिल एज में कुछ भक्त मीराबाई जैसे हो गए,
हाँ जी,
कि इनका ईश्वर से इतना अधिक प्यार था कि उनके मनस पटल पर उसकी आकृति अंकित थी और इसलिए जहां वो देखते थे वही आकृति उन्हें नजर आती थी, तब उन्होंने भजनों में ये गाया कि जहां देखूं वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है
जी।
लेकिन ये भाव है, और शायद उस भाव को लेकर के हम भी जीवन में चले तो हमसे भी कभी कोई गलत काम, कोई पाप कर्म नहीं होगा
जी।
लेकिन जैसे कहा जाता है, सांप चला गया निशान छूट गया है, भाव खत्म हो गया और सिद्धांतिक रूप से मानने लगे ये टेबल में भी परमात्मा, ये कुर्सी में भी, अब सबकी पूजा करने लगेंगे तो ये तो अंधश्रद्धा हो जाएगी ना
जी।
तो भावनात्मकता को हम भी स्वीकार करते हैं
जी,
कि सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है और उसको हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सिद्धांत।
दोस्तों मैं समझता हूं दीदी ने जिस प्रकार हमें विस्तार पूर्वक समझाया है, हमें उत्तर से संतुष्टि अवश्य प्राप्त हुई होगी। पर दीदी एक मंशा मेरे मन में अभी भी है
जी।
कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यूं तो परमात्मा का साथ अगर साथ समीप ही विराजमान है आत्मा के, तो हमें शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। मगर दूसरी ओर कहा जाता है कि एक बुदबुदा है जो कि सागर में जाकर के समा जाना है, ये सब क्या है, इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
ऐसा है कि देखो अभी आप जो बात कर रहे थे कि भाई हम परमात्मा के निकट रहते हैं तो उसके संग का रंग हमें लगना चाहिए, और दूसरी ओर हमने कहा कि भाई सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया
जी,
ये एक मान्यता, ये दोनों जैसे एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो इसीलिए वास्तव में अगर देखा जाए कि आत्मा परमात्मा का अंश का भाव है, अगर लिटरल वे में लिया जाए तो टुकड़ा है
जी,
है ना, टुकड़ा है। अब आत्मा के लिए तो हमने आत्मा के एपिसोड में देखा था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, कि आत्मा न जर्जर होती है न मरती है न उसके अस्तित्व का विनाश होता है
जी,
तो उसका टुकड़ा भी नहीं हो सकता है। आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत शक्ति है, परमात्मा भी शाश्वत शक्ति है तो उसका भी टुकड़ा नहीं हो सकता है
जी।
तो अगर अंश कहे तो अंश माना तो टुकड़ा, तो हम टुकड़े नहीं है जो जाकर के समा जाए। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया ये संभव है क्योंकि वो मैटर है
जी,
लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है
जी जी जी,
शक्ति है। और शक्ति के लिए तो यही कहा जाता है, एनर्जी के लिए तो यही कहा जाता है, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड
जी जी।
तो इसलिए परमात्मा का टुकड़ा भी नहीं हो सकता है, ना जाकर के उसमें मिलने वाली बात होती है, टुकड़ा हो तो मिले लेकिन टुकड़ा ही नहीं हो सकता है तो मिलेगी कैसे, है ना। जिस तरह आज देखो, आज एक बच्चा है, बच्चा इस संसार में अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से कोई भी स्टेटस को प्राप्त कर सकता है, कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है?
कभी नहीं।
पिता जैसा बन सकता है
जी,
पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर के छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा
जी।
ठीक इसी तरह हम भी परमात्मा की संतान अवश्य है, उसके टुकड़े नहीं है। पिता जैसा बन सकते हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम पिता बन जाएंगे या उसमें समा जाने वाली बात। आत्मा और परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है, इटर्नल उसको कहा, इटर्नल माना उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है
जी जी।
और इसीलिए अंश नहीं लेकिन हम संतान जरूर है
जी, हम भगवान के बच्चे हैं,
बच्चे
हम भगवान नहीं हो सकते। तो ये मान्यता जो कि हम भगवान हैं या हाँ, भगवान हम में है, ये कहीं ना कहीं कुछ भ्रामक मान्यता,
क्योंकि आज कई बार मनुष्य ये भी कह देता है कि हाँ भाई जैसे एक बच्चा बाप का अंश है, लेकिन बच्चा बाप का अंश माना ये बॉडी
जी,
है ना, और ये बॉडी तो उसी मैटर की बनी है, तो इसलिए बच्चा बाप का अंश हो सकता है, ये बॉडी पांच तत्वों की बनी है वो अंश हो सकती है, लेकिन आत्मा के लिए ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, इसलिए कंपैरिजन ही कुछ सही बैठती नहीं है
जी जी जी, क्योंकि आत्मा का भी विनाश नहीं होना
जी,
और वो सदा रहने वाली है, शाश्वत है जैसा आपने हमें बताया, और परमात्मा भी शाश्वत है
जी।
तो ये तो बड़ी विचित्र सी बातें हैं, हमारी जो मान्यताएं थी या हमारे जो भ्रम थे, वो दीदी जिस प्रकार से हमें तार्किक रूप से समझा रही हैं, जिस प्रकार से वैज्ञानिक रीति से समझा रही हैं, मैं समझता हूं हम सभी को स्पष्ट हो रहा होगा। दीदी आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके एक बार फिर हमारे बीच में आए, मैं अपनी ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों, परमात्मा को लेकर के अनेक प्रश्नों का समाधान हमें आज के एपिसोड में मिला। परमात्मा निराकार है और परमात्मा की सर्वव्यापकता भावनात्मक रूप से सत्य है। हम सभी परमात्मा के अंश नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, वंश है, संतान है। और शिव और शंकर में कितना अंतर है, हम सब एक मान बैठे थे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें दीदी जी ने बड़े ही तर्कपूर्ण रूप से, वैज्ञानिक रूप से संतोषजनक उत्तर दिए। लेकिन ऐसे ही अनेक प्रश्न अभी भी आपके मन में होंगे। उन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।